Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Parmashuddhayo Pratasmaraniyo प्रेमपुरी आध्यात्मिक प्रतिष्ठान के अधिष्ठाता अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज, परम शुद्धेय प्रातस्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महाराज श्री, दोनों महापुरुषों के पावन चरणों में नमन करते हुए मंचस्थ विराजमान परम श्रद्धेय परम आदरणीय स्वामी श्री महेशानी जी महाराज की पावन चरण कमलों में नमन करते हुए भगवान की कथा में निरंतर अपने मन को प्रवाह करने वाले सभी साधक जन, श्रोता जन, कठोपनिषद के अंतर्गत आप सभी विराज रहे हैं। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सूत्र है, अक्सर इसका आप श्रवण करते हैं, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। किसी भी कार्य की परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण करना चाहिए। एक छोटा ग्रंथ हनुमान चालीसा और एक बड़ा ग्रंथ वेद, आपके जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, सभी धर्म ग्रंथों के प्रारंभ में, मध्य में और अंत में मंगलाचरण किया जाता है। आपके इस कठोपनिषद के भी प्रारंभ में मंगलाचरण है और आप दशशांति मंत्रों का जो पाठ करते हैं, शम नो मित्र शम वरुण, ये भी मंगलाचरण है। और हमारा वेद कहता है समाप्ति कामो मंगलम आचरे। आप अपने सफलता को पाना चाहते हैं, पूर्ण सफलता। यहां समाप्ति कामों का अर्थ क्या है? यहां समाप्ति कामों के दो अर्थ हैं। समाप्ति काम का अर्थ है कार्य की पूर्णता और समाप्ति काम का अर्थ है कामना की समाप्ति। आप क्या करना चाहते हैं? आप कार्य की पूर्णता करना चाहते हैं कि कामना की पूर्णता करना चाहते हैं? आप यहां एक तीसरा भी अर्थ ढूंढ लीजिए। इसमें आप कार्य की पूर्णता करते हैं, पुनः दूसरा कार्य खड़ा हो जाता है, और आप कामना की पूर्ति करते हैं तब भी दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। एक कामना पूरी भी नहीं हो पाती और उसे लगी हुई दूसरी कामना खड़ी हो जाती है। इसलिए सामान्य व्यक्ति कार्य की पूर्ति चाहता है, उससे थोड़ा विशेष व्यक्ति होता है, वो कामना की पूर्ति चाहता है, और उससे भी परे जो श्रेष्ठ महापुरुष होते हैं वो कामना की पूर्ति नहीं, कामना की निवृत्ति चाहते हैं। कामना की पूर्ति दूसरे कामना को पैदा करती है, क्योंकि उस कामना में दूसरे कामना को पैदा करने का बीज विद्यमान होता है। लेकिन कामना की जब निवृत्ति हो जाती है, अब वो कामना दूसरी कामना को पैदा नहीं करती, क्योंकि वो निर्बीज है, वो निवृत्त हो गए, अब खत्म हो गए। इसलिए श्रुति कहती है कि आप या अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं या आप अपनी कामना की पूर्ति करना चाहते हैं अथवा आप अपने कामना की निवृत्ति करना चाहते हैं, तो उसका उपाय क्या है? तो शास्त्र कहता है कि मंगलम आचरे, आप अपने आचरण को मंगल बना लीजिए, बस आप अपने आचरण को मंगलमय बना लीजिए। इसका अर्थ तो यही है मंगलम आचरे, या आचरण की बात, अथवा आप समझ लीजिए कि मंगलमय परमात्मा का थोड़ा ध्यान कीजिए, मंगलमय परमात्मा के नाम का थोड़ा स्मरण कीजिए, क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु, आप श्रवण करते हैं ना कि मंगलमय परमात्मा का नाम है, भगवान विष्णु है, भगवान शंकर है, और इसका एक बड़ा विशेष महात्म्य है कि हमारे आंखों से, हमारे इंद्रियों से जो चीज गुजरती है वो चीज हमारे मन पर असीम प्रभाव छोड़ जाती है। एक व्यवहार का सामान्य सा नियम है, सामान्य सा नियम, हमारे कानों से जो चीज गुजर जाती है, चीज तो गुजर जाती है, शब्द तो गुजर जाते हैं, लेकिन वे शब्द हमारे मन पर अमिट प्रभाव छाप छोड़ के चले जाते हैं। आपको कोई कहे कि वाह भाई गिरीश क्या सुंदर है महात्मा, शब्द है, और वो शब्द आपके कानों से गुजर गया लेकिन आपके मन में प्रसन्नता आह्लाद छोड़ देता है, और वही शब्द यदि आपको कठोर बोले तो उसका प्रभाव ऐसा पड़ता है। ये केवल शब्द की बात नहीं है, ये आंखों के सामने, हमारे पांचों ज्ञानेंद्रियों के सामने जो चीज गुजरती है वो हमारे मन पर प्रभाव छोड़ देती है। और जब आप भगवान का मंगलमय नामस्मरण करते हैं, श्रवण करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो वो भगवान की मंगलमयता, भगवान की पवित्रता हमारे मन में संचरित हो जाती है। ये सूत्र बड़ा महत्वपूर्ण है। आप अपने कार्य को पूरा करना चाहते हैं, आप अपनी कामनाओं की निवृत्ति करना चाहते हैं, पूर्ति करना चाहते हैं, और शास्त्र कहता है आप मंगल का आचरण करें, तो इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण भाव है। हम अपनी जीवन की सफलता को प्राप्त करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं, उसमें तीन सूत्र होते हैं। उसमें पहला जो सूत्र है ना, वो कठोरतम पुरुषार्थ। अब इस बात को ध्यान देकर श्रवण करेंगे कि यहां मंगल करने का रहस्य क्या है। मंगल का आचरण कोई अंधविश्वास नहीं है, ये हमारे जीवन की सफलता की अनुभूति है। आप सफलता पाना चाहते हैं, चाहे आध्यात्मिक चाहे सांसारिक, उसका पहला जो सूत्र है ना, वो है कठोर पुरुषार्थ, माने उस दिशा में श्रम करना। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप किसी भी दिशा में, आप छोटी सी छोटी सफलता भी पाना चाहते हैं तो भी आपको पुरुषार्थ करना पड़ता है। मैं अक्सर कहता हूं थोड़ा आप ऊपर थोड़ा आगे आइए, लेकिन आप अपनी जगह से मत हिलिए, आप थोड़ा आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ने लगेंगे, लेकिन मैं कहूं कि आप अपनी जगह से मत हिलिए और फिर आगे बढ़िए, तो आप अपनी जगह से बिना हिले आप एक इंच आधा इंच थोड़ा आगे आ सकते हैं क्या? ये श्रम है, ये परिश्रम, ये पुरुषार्थ है। आपको एक इंच भी आगे बढ़ना है तो आपको अपनी जगह से हिलना पड़ता है, ये श्रम है, श्रम, ये पुरुषार्थ है, और ये प्रत्येक दिशा में है। आप कोई भी सफलता पाना चाहते हैं तो पहला सूत्र है परिश्रम। अब वो परिश्रम कई प्रकार के होते हैं, आपके परिश्रम शारीरिक परिश्रम भी है, बौद्धिक परिश्रम भी, मानसिक परिश्रम भी है, बैठना भी परिश्रम, आप ऑफिस में कुछ भी नहीं करते केवल बैठे रहते, वो भी परिश्रम है, और वो परिश्रम आपको आगे बढ़ाता है, लेकिन उसके साथ एक और चीज है, और वो चीज है आपकी एकाग्रता। आप श्रम करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, लेकिन आपके परिश्रम के साथ एकाग्रता नहीं है, तो आपका श्रम ऊर्जा में नहीं बदलेगा, आपका श्रम आपको सफलता की तरफ नहीं ले जाएगा, क्योंकि एकाग्रता के अभाव में हमारी श्रम शक्ति बिखर जाती है, जैसे आप श्रवण कर रहे हैं, ये श्रम है, श्रवण एक श्रम है, श्रवण एक पुरुषार्थ है, लेकिन श्रवण के साथ यदि एकाग्रता नहीं है तो आपका मन भटकेगा, आपका श्रवण भटकेगा, विचारों में प्रवाहित होता जाएगा, अनेकों प्रकार की भावनाओं में चला जाएगा और उस समय आपको अपेक्षित लाभ नहीं मिलेगा। एकाग्रता के अभाव में तो आदमी चाय भी नहीं बना सकता है और क्या। आपके मन में यदि एकाग्रता नहीं है तो आप चाय बना रहे थे और उस समय आप क्या डालेंगे चीनी की जगह पर, ऐसा होता है, हमने भी कई बार पिया है चाय, नमक की चाय पी है। डालना था चीनी और आपकी एकाग्रता भंग हो गई, आपका मन कहीं और चला गया। आप कर तो रहे हैं, आप श्रम तो कर रहे हैं, आप बना तो चाय रहे हैं, लेकिन वो चाय नहीं बनी। बनारस में पंडित लोग बड़ा सूत्र बोलते थे पढ़ाते समय, हमारे गुरुजन भले बना रहे थे गणेश जी और बन गए बंदर। गणेशम कुर्वाणः रचया मास वानर, बना रहे थे गणेश जी की प्रतिमा और ध्यान भंग हुआ और वो क्या बन गए, वानर बन गए। एकाग्रता नहीं, इसलिए आप जब किसी को बोलते हैं ना थोड़ा भैया ध्यान से चलो, ऐसा बोलते कि नहीं, थोड़ा ध्यान से करो, ध्यान से सुनो, ध्यान से ये काम करो, माने एकाग्रता जोड़ो, क्योंकि एकाग्रता के बिना आपका जो श्रम है वो आपको सफलता तक पहुंचाने में समर्थ नहीं है। इसलिए आपको शास्त्रों ने जगह जगह पर कहा एकाग्र मन करो, मन की एकाग्रता को साधो, ये आपका जो धर्म है ना ये मन की एकाग्रता को साधने के लिए। भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य ये मन की एकाग्रता को साधने के लिए है। आप परिश्रम करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, अपने दिशा में काम करते हैं, मन में एकाग्रता भी है। अब आपको सफल होने में कोई नहीं रोकेगा, आप सफल होंगे, आपकी श्रम शक्ति ऊर्जा में बदल जाएगी। लेकिन एक तीसरा सूत्र भी है जो अपनी सफलता को बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है। आप सफल हो गए, आपके जीवन में शक्ति का सृजन हुआ, आप शक्तिमान बन गए, लेकिन उस शक्ति को आप अपने नियंत्रण में कैसे रखेंगे। इसलिए उस शक्ति को नियंत्रण में रखने के लिए, उस शक्ति को बनाए रखने के लिए एक तीसरी चीज की आवश्यकता है और वो चीज है पवित्रता। ऐसा होता है व्यक्ति बहुत श्रम करते हैं, आज हमारे राजनेताओं को आप देखें, इनके पास परिश्रम है, बहुत इन्होंने परिश्रम किया अपने दिशा में और बड़े बुद्धिमान लोग हैं, बड़े एकाग्रता के धनी हैं, जो काम करते हैं बड़े लगन से करते हैं और उनके पास अमित ऊर्जा है, शक्ति है, सत्ता है, धन है, सब कुछ है, लेकिन एक चीज नहीं है और वो चीज है पवित्रता। पवित्रता नैतिक चरित्र प्रदान करता है, पवित्रता इंद्रिय संयम को पैदा करता है, पवित्रता हमारे मन में श्रद्धा को पैदा करती है। इसके लिए आपको समझने के लिए बड़ा सुंदर उदाहरण है, पुराण का उदाहरण। आपने एक असुर का नाम सुना है भस्मासुर, आपके जितने भी असुर हैं ना वो भस्मासुर की तरह हैं। चाहे आप रावण को गिने चाहे कंस को, ये सारे भस्मासुर के प्रतीक हैं और यदि हम अपने आप को भी डालें तो भी कुछ कम नहीं, भस्मासुर है। उसका नाम भी बड़ा मजेदार, भस्मासुर माने भस्म हुआ असुर अथवा भस्म से पैदा हुआ असुर। और उसको भगवान शंकर ने वरदान दिया है कि जिसके भी सिर पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाए। तो मैं आपको पूछता हूं कि भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दिया था, जिसके भी सिर पर हाथ रखे वो भस्म हो जाएगा, तो ये वरदान था कि अभिशाप था? आप इसको क्या समझते हैं, वो वरदान था कि अभिशाप था? लेकिन आप तो वरदान ही बोलते हैं। वस्तुतः वो अभिशाप नहीं था, वो वरदान ही था। वर माने श्रेष्ठ और दान माने दिया हुआ, क्योंकि कोई भी शक्ति होती है ना, वो कभी अच्छी या बुरी नहीं होती, वो शक्ति जो भगवान ने दिया वो ताकत थी, शक्ति थी, और उस शक्ति का वो सृजनात्मक उपयोग कर सकता था, उसका रचनात्मक उपयोग कर सकता था, अपने विकास के लिए उसका उपयोग कर सकता था। लेकिन वहां आप जोड़ना कठोर परिश्रम है, वहां एकाग्रता भी है। भगवान शंकर ऐसे थोड़ी वर दिए हैं, भगवान शंकर को अपनी सेवा से उन्होंने प्रसन्न किया है और बड़ी तल्लीनता से सेवा की उसने। महापुरुषार्थ है, वहां पर एकाग्रता है, लेकिन एक चीज नहीं है, और उसी एक चीज के नहीं होने के कारण आज वो भस्मासुर क्या सोच रहा है, आज वो भस्मासुर सोचता है कि वाह ताकत मिली है, अब तो मैं सर्वोच्च हो गया, अब तो मैं सबसे बड़ा हो गया। भगवान शंकर के तरफ आगे बढ़ने लगता है। भगवान शंकर पूछते, भैया तू आगे क्यों बढ़ रहा है, हाथ भी आगे हैं। पहले भगवान शंकर ने हाथ उठाया, जब वरदान दिया हो तो अभी भगवान ने ऐसे किया होगा और आज ये व्यक्ति भी भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने जा रहा है। भगवान शंकर ने भी हाथ रखा था और आज भस्मासुर भी भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने के लिए जा रहा है। भगवान शंकर ने कहा, भैया तुम तो चेले हो, आशीर्वाद देने का अधिकार तुम्हारा थोड़ी है, आशीर्वाद तो हमने दिया, और तुम आगे क्यों आ रहे हो, आगे क्यों बढ़ रहे हो? भस्मासुर ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि आपने जो दिया है वो मुझ मिला कि नहीं, जब तक इसका परीक्षण नहीं करूं तब तक कैसे मालूम पड़ेगा कि आपने दिया भी कि नहीं, और जब कभी प्रसंग आए और मैं परीक्षण करके देखूं और वो चीज मुझे नहीं मिली तो मैं क्या करूंगा, कहां ढूंढूंगा आपको? और दूसरी बात, आप तो महादेव हैं सबसे बड़े, और मैं आपके सिर पर हाथ रखकर मैं आपको समाप्त कर देना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद तो सबसे बड़ा महादेव तो मैं बनूंगा। ये कितनी बड़ी अपवित्रता, जिसने वर दिया है, जिसने पैदा किया है, आज वो व्यक्ति उसी को समाप्त करने के लिए चल पड़ा है, ये कितनी बड़ी अपवित्रता, ये कितना नैतिक चरित्र की भ्रष्टता। आज जिसने पैदा किया आज उसी को मारने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो आपको तो मालूम है, जब भस्मासुर भगवान शंकर के ऊपर हाथ रखने के लिए चल पड़ा तो क्या भगवान शंकर ने स्वागत किया क्या, भैया आओ आओ? क्यों? क्योंकि भगवान शंकर ने ये थोड़ी बोला था कि भैया जिसके सिर पर हाथ रखोगे वो मर जाएगा, लेकिन मेरा सिर छोड़ के, ऐसा बोला था क्या? भगवान ने अपने सिर को थोड़ी बचाया था, क्योंकि भगवान को क्या मालूम था कि ये मेरे कोई मारने के लिए आएगा। आज भगवान शंकर को पता है मेरा वर है, और जिसका भी सिर होगा उसके ऊपर हाथ रखते ही वो भस्म हो जाएगा। भगवान शंकर भागे, और आपको तो आगे का प्रकरण मालूम है, भगवान शंकर जब भागे तो कैसे भागे होंगे, धीरे धीरे, अरे जान बचा के महात्मा लोग तो सुनते हैं, सुनाते हैं जो ऐसे भागे कि जो व्याग्रांबर पहना था ना, भाई व्याग्रांबर आप पहन लेना कभी, बड़ा कठिन है वो बांध के रखना पड़ता, ऊपर से कुछ लंगोटी वंगोटी बांध के रखना पड़ता है। और जब भगवान शंकर भागे जान बचा के, जान बचा के, ऊपर से भगवान विष्णु ने देखा, बाबा क्यों भाग रहे, समझ के, और वहां मोहिनी का रूप धारण करके भगवान विष्णु प्रकट हो गए। और आश्चर्य की बात, जैसे ही उसने मोहिनी को देखा, वो भगवान शंकर को भी भूल गया और दिए गए वरदान को भी भूल गया। देखो यही नैतिक चरित्र, यही अपवित्रता। जहां साक्षात भगवान है लेकिन मोहिनी के आगे भूल गया, और इतना मोहिनी में रम गया, इतना जम गया, उसने मोहिनी को कहा कि तुम्हारे साथ मुझे विवाह करना है। अब वो मोहिनी भगवान का रूप, नाम भी मोहिनी, भगवान की भी अद्भुत लीला। भगवान ने कहा कि बिल्कुल मैं भी विवाह करना चाहती हूँ और तुम्हारे जैसे व्यक्ति को चाहती हूँ मैं। मोहिनी माया है वो, और माया भी ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है। मोहिनी ने कहा कि विवाह तुम्हें करूंगी लेकिन एक रिवाज है, पूरा करना पड़ेगा। और वो रिवाज है कि जिसके साथ मुझे शादी करना है उसके साथ पहले मुझे नाचना पड़ेगा, तब जाके मैं शादी कर पाऊंगी तुम्हारे साथ। अब भस्मासुर ने कहा कि देर किस बात की, चलो नाचते हैं। नाचना शुरू हो गया। भस्मासुर ने कोई ट्रेनिंग थोड़ी ली थी नाचने की, उसको नाचना थोड़ी आता था। अब वो मोहिनी को देख देख के नाच रहा था। वो मोहिनी कमर पर हाथ रखती तो भी कमर पर हाथ रखता, जब वो हाथ कंधे पर रखती तो कंधे पर रखता, वो नयन मटका दी तो वो भी मटकाता। और अंत में मोहिनी ने अपनी नृत्य की मुद्रा में अपने हाथ को अपने सिर पर रखा, और वो देखते हुए भस्मासुर ने भी अपने हाथ को अपने सिर पर रखा, और वो क्या बन गया, भस्म बन गया। अब मैं आपको पूछता हूं कि वो वरदान था क्या अभिशाप था? अब मैं पूछता हूं, अब देखो वो था वरदान, लेकिन अपनी नासमझी के कारण उसको उन्होंने क्या अभिशाप में बदल दिया। बस वो वरदान था लेकिन उसी वही वरदान उसके मृत्यु का कारण बना। अपनी नासमझी से उसने उसको अभिशाप बना दिया। हमारे जीवन में किस चीज की कमी है? हमारे जीवन में जो भी चीजें भगवान ने दी है ना, वो सब कुछ वरदान। काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, आपके जीवन में ऐसी कौन सी चीज है जो भगवान के द्वारा दी हुई है और वरदान नहीं है, लेकिन हम उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं। और वही चीजें हमारे जीवन को नष्ट कर देती हैं। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण सुना देता हूं। आपके जीवन में भय है, आपके जीवन में भय कितना महत्वपूर्ण है। मैं आपको पूछूं कि आपको डरना चाहिए कि नहीं, तो आप तुरंत उत्तर देंगे कि डरना नहीं चाहिए। लेकिन भय के बिना, डर के बिना आपके जीवन का होना ही संभव नहीं है। आप जब अपने घर से सत्संग के तरफ बढ़ रहे थे तो आप डरते डरते आ रहे थे कि बिना डरे? आप डरते डरते आ रहे थे। आपको गिरने का डर था, सीढ़ियां आप उतर रहे थे तो आप डरते डरते कि बिना डरे? गिरने का डर था, आप देखते देखते। आप जब द्वार से प्रवेश कर रहे थे तो आप डरते डरते कि बिना डरे? आप ध्यान देना, बात बड़ी गहरी है। आप जब चलते हैं ना तो आप डरते डरते चलते कि बिना डरे? हाँ, थोड़ा डरते डरते कहीं कुर्सी में हाथ न लग जाए, न पैर न लग जाए। आप में डरना हो ना तो आप सीधा भी चल जाओ और आप दीवार से टकरा जाओ। आप अपने छत पर हैं तो आप टहलते हैं तो आप डरते डरते कि बिना डरे? आप समुद्र के किनारे जाओ, डर है आपके अंदर, डरना हो तो आप सीधा समुद्र में प्रवेश कर जाए। आप भोजन करते हैं तो डरते डरते कि बिना डरे? अब आप ईमानदारी से सोचना थोड़ा, मैं कह रहा हूं इसलिए मत मानना। आप भोजन भी करते हैं ना तो डरते डरते, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो पेट खराब हो जाएगा। पेट खराब होने का भय, आप भोजन कर रहे हैं लेकिन आप ध्यान रखते नहीं भैया, ये नहीं ये नहीं ये नहीं, आप प्रत्येक क्रियाओं को संभाल कर करते हैं, उसके मूल में भय। इसलिए भगवान कहते मेरे भय से सूर्य चलता है, भगवान कहते मेरे ही भय से इंद्र, मेरे ही भय से मृत्यु चलती है, ये हवाएं बहती हैं। भगवान कहते भयान्वितम, ये संपूर्ण जो विश्व है ये भय से चलता है, ये भय हमारे जीवन का वरदान है, अनुशासन है, सावधानी है। आपके जीवन में ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो आपके जीवन में वरदान ना हो, हाँ, लेकिन आपको उसका उपयोग करना आना चाहिए, उसका सदुपयोग करना आना चाहिए। ये क्रोध वरदान है, मैं आपको बताऊंगा अगले प्रकरणों में बताऊंगा वो कैसे वरदान हमारे जीवन का है, लेकिन यही चीज हमारे जीवन में अभिशाप बन जाती है, यही देखना ये वरदान भी है अभिशाप भी है, यही सुनना वरदान भी है और अभिशाप भी है, हमारे पास ये हमारा दिमाग है ये वरदान भी है और ये अभिशाप भी है। आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी किससे हैं? आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी हम अपने आप से हैं। हम तो दूसरे को व्यर्थ ही निमित्त बना देते हैं, हम सबसे ज्यादा तो हम अपने मन से दुखी हैं। हमारा मन माने हम स्वयं अपने आप को जितना दुखी करते हैं दुनिया में कोई करता है? हम अपने आप से वरदान भी हैं और अभिशाप भी, केवल आपको आना चाहिए, अपने जीवन को जीने की कला आना चाहिए। इसलिए हमारे पास जो असीम शक्तियां हैं उन शक्तियों के सदुपयोग के लिए और उनको बनाए रखने के लिए पवित्रता का होना बहुत आवश्यक है, कठोर परिश्रम, एकाग्रता, और एकाग्रता पूर्वक कठोर परिश्रम के द्वारा सृजित जो शक्ति है उस पर नियंत्रण करने के लिए पवित्रता। ये तीन चीजें हमारे जीवन में अति आवश्यक, अति आवश्यक। और इन तीनों में से एक भी चीज यदि इधर उधर हो गई तो फिर आप अपनी सफलता को पा नहीं पाएंगे, और पा भी लेंगे तो आप उसको जमा के नहीं रख पाए। अब वो पवित्रता कहां से आएगी? वो पवित्रता आएगी मंगल से, वो पवित्रता आएगी जप से, ध्यान से, शास्त्र के श्रवण से, सत्संग से। इसी पवित्रता का संसाधन करने के लिए ही शास्त्र ने कहा कि आप मंगलाचरण करो, समाप्ति कामो मंगलम आचरेत। और ये जो मंगलाचरण है ना, मन की एकाग्रता का भी संसाधन है,